हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीबॉडी। कल हम सब ने राजयोग माना क्या, राजयोग से क्या क्या प्राप्ति होती है उसके बारे में जाना। आज हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी जी हैं। आपने एमए इंग्लिश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से पूरा किया है। आपकी एक विशेषता है, थ्रू आउट एजुकेशन आपका मेरिट के द्वारा ही हुआ है, तो आप ज्ञान में 1981 से ज्ञान में हैं। 1985 में आपने अपना पूरा जीवन इस परमात्मा के विश्व कल्याण कार्य में समर्पित किया। वर्तमान समय आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट अबू में राजयोग शिक्षिका हैं। साथ में आप संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका और सह संपादिका त्रैमासिक हरियाली पत्रिका। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों तथा नेपाल में भी ईश्वरीय सेवाएं की हैं। आपने अफ्रीका महाद्वीप के केनिया देश में और थाईलैंड तथा बर्मा में भी ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी विभिन्न विषयों पर संबोधित किया है। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक विकोपों से राहत शिविर लगाने का विशेष अनुभव आपके पास है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स तथा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका सक्रिय योगदान रहता है। आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं। आपके लेख परिवर्तनकारी होते हैं, अनेक पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं। अमृत संचय नाम से आपके 3 पुस्तिकें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी प्रकाशित हुई हैं। आप तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, 3 Q's कॉन्सेप्ट, स्व प्रबंधन नेतृत्व कला, व्यक्तित्व विकास, माइंड मैनेजमेंट आदि विषयों पर आप स्पीच देती हैं। कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस तथा अन्य अनेक प्रकार के संस्थानों में भी आपने प्रवचन दिए हैं तथा राजयोग अनुभूति कराई है। ऐसे बहुरूपी प्रतिभाशाली वरदानी भूमि की निवासी वरदानी मूरत आत्मा, तपोभूमि निवासी तपस्वी मूरत आत्मा, परमात्मा के अनन्य रतन आदरणीय उर्मिला दीदी जी आज हमको राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसका विस्तार रूप से सुनाएंगे। मैं आप सबकी ओर से, परमात्मा की ओर से, तहे दिल से दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिव स्वागत है, सुस्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन चार दिन से आप राजयोग के विषय में विस्तार से सुन रही हैं। राजयोग को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं और मेडिटेशन शब्द लैटिन भाषा के मिडरी शब्द से बना है जिसका अर्थ है समाधान। हिंदी में कहते हैं आप्त काम, अर्थात सर्व कामनाओं की पूर्ति ये राजयोग से होती है। पर कैसे होती है, टूल्स क्या हैं उसके? तो वास्तव में राजयोग के द्वारा हमें अनेक आंतरिक आत्मिक आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, वही हमारे टूल बनते हैं सफलता के लिए। तो आज हम उन अष्ट शक्तियों पर विशेष चर्चा करेंगे जो राजयोग से प्राप्त होती हैं। भारत में आठ का शब्द बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण जी की हम अष्टमी मनाते हैं, दुर्गा जी के आठ हाथ दिखाते हैं, अष्ट सिद्धियों का गायन है, अष्ट रत्नों का भी गायन है। और आज हम चर्चा करेंगे अष्ट शक्तियों की। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे सहन शक्ति की। आप चित्र में देख रही हैं, एक वृक्ष है और बच्चा उस वृक्ष को पत्थर मार रहा है और बदले में वृक्ष बच्चे को क्या दे रहा है? उसके पास अगर फल होंगे तो फल देगा, नहीं तो पत्ते देगा, नहीं तो कोई डाली देगा, कुछ न कुछ जरूर देगा। तो इस चित्र की व्याख्या ये है कि जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, जो आपको पत्थर मार रहा है, जो आप पर अपकार कर रहा है, उस पर भी आप परोपकार करो, इसका नाम है सहन शक्ति। अब जब हम ये बात आज के समय में भाई बहनों को बताते हैं तो कईयों के मन में सवाल उठता है कि बहन जी, कोई हमें पत्थर मारे और बदले में हम उसको फल दें, उसके साथ प्यार करें, ये कैसे संभव है? वो तो और बिगड़ जाएगा, वो हमको कमजोर समझेगा। भाइयों और बहनों, बदले में फल देने का अर्थ क्या है? अपने भीतर उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना पैदा किए बिना उसके प्रति रहम भाव, दया भाव, करुणा भाव और उसको परिवर्तन करने की शुभकामना अगर है तो वो जरूर बदलेगा। एक कहानी मुझे याद आ रही है। दो पड़ोसी साथ साथ रह रहे थे। एक संडे को एक पड़ोसी ने अपने कारखाने की सफाई की और बाल्टी भर भर के जो रबिश निकली, जो किचड़ा निकला, वो कुछ अपने घर के चारों ओर और कुछ पड़ोसी के घर के इधर आसपास फेंक दिया। पड़ोसी का आम का बगीचा था, वो सुबह अपने खेत में जाता था, शाम को आता था। शाम को लौटा तो उसने समझ लिया कि ये पड़ोसी का ही कूड़ा, पर बोला कुछ भी नहीं, सो गया। कल सुबह बगीचे में फिर गया और शाम को दो मीठे आम के टोकरे भरे हुए लेके आया और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी समझ गया कि इसने कूड़ा देखा और मुझे उलाना देने आया है। दरवाजा खोला ही नहीं, लेकिन ये भी खटखटाता ही रहा। आखिर पड़ोसी को दरवाजा खोलना पड़ा और बड़े ही रूखे स्वर में बोला, क्या बात है, क्यों इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हो? तो उसने बड़े प्यार से कहा, मित्र, मेरे बगीचे में पहले पहले आम पके हैं और तुम मेरे पड़ोसी हो, तो मेरे आमों पे पहला हक आपका है। मैं आपके लिए ये दो टोकरे आम लेके आया हूं। तो वो ऐसे देखने लगा और फिर थोड़ा शर्मशार होके कहता है कि मुझे ना थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैंने कूड़ा थोड़ा आपके घर के आगे भी फेंक दिया, माफ करना। उसने कहा, कोई बात नहीं है। तो बोला, आपको बुरा नहीं लगा? बोला, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। आपके पास जो चीज थी वो आपने दे दी और मेरे पास जो चीज थी वो मैंने दे दी। दिस इज द वे जिससे हम किसी व्यक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुखी होते रहते, मेरा पड़ोसी खराब है, बहुत खराब है, रोज कूड़ा फेंक देता है, मैं क्या करूं, मैं भी बदले में इसके घर में कूड़ा फेंकूंगा, तो ये तो ईंट का जवाब पत्थर से है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ना तो ये झगड़ा खत्म होगा, ना नेगेटिविटी खत्म होगी। हाँ, मन में टेंशन, अशांति, अधीर्य, शत्रुता, बहुत सारे नेगेटिव भाव पैदा हो जाएंगे। और आज हम देखते हैं दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, ऐसे विचारों के कारण ही तो है, ना हम बदलते हैं ना दूसरा बदलता है। सहन करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि सहन के साथ शब्द लगता है शक्ति, अर्थात सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहन के साथ शब्द लगता है शीलता, शील अर्थात ऊंचा चरित्र। जैसे एक पत्थर की शिला है, हम उसको तराश देते हैं हथौड़े की चोट से तो वो शिला बन जाती है, शिला माने चरित्रवान। तो सहनशीलता अर्थात सहन करने वाला शील की मूर्त बन जाता है। एक नजर भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे डालिए, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सहन किया, क्या वो लोग कमजोर थे? चंद्रशेखर आजाद आए, उसने कहा मुझे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना है। उनकी परीक्षा ली गई, परीक्षा क्या थी? जलती मोमबत्ती पे अपनी उंगली रखो और मुख से सी की आवाज नहीं आनी चाहिए। वो उसमें पास हो गई और उसको आजादी की लड़ाई में शामिल कर लिया गया। तो क्या वो कमजोर थे? क्या सहन करने वाले लोग कमजोर होते हैं? मीराबाई ने भगवान के लिए जहर का प्याला पिया, लोगों की गालियां खाई, घर से निकाल दी गई, अधिकार छीन लिए गए, क्या वो कमजोर थी? एक माँ बच्चा क्या नहीं करता, गोदी गंदी कर देता है, बाल खींच लेता है, नाक में उंगली, कान में उंगली दे देता है, नाखून चुभो देता है, दांत चुभो देता है, सब कुछ सहन कर लेती है माँ, क्या माँ कमजोर है? क्या सहन करने वाले कमजोर होते हैं? कोई देश के लिए सहन करता है, कोई प्रभु प्रेम में सहन करता है, और माँ अपनी संतान के प्रेम में सहन करती है, ये सब ताकतवर लोग हैं। कमजोर व्यक्ति तो सहन कर ही नहीं सकता, कमजोर व्यक्ति तो या तो बदला लेगा, या तो पेसिमिस्ट हो जाएगा, या तो अभिमान में आ जाएगा। इसलिए सहन करना एक बहुत बड़ी ताकत। फिर कई लोग एक सवाल और पूछते हैं, कहते हैं बहन जी आखिर सहन करने की भी कोई सीमा तो होनी चाहिए, कब तक सहन करें आखिरकार? भाइयों और बहनों, इसका उत्तर यही है कि जब तक जीना है तब तक सहना है। क्या आपने कभी ये पूछा कि सर्दी को कब तक सहन करना है? हर साल सर्दी आती है और सहन करते हो? कभी आपने पूछा गर्मी को कब तक सहन करना है? जब तक जीना है गर्मी सहनी है, जब तक जीना है सर्दी सहनी है, और जब तक जीना है इंसानों को भी सहना है। इंसानों के बीच में रहते हैं, सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक इंसानों से हमारा पाला पड़ता है, परिवार में, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, कहीं भी। लेकिन हम सबसे ज्यादा असहनशील मनुष्य के प्रति। मान लीजिए आप सड़क पे जा रही हैं और एक बैल है, उसकी बैल की पूंछ बड़ी गंदी है, आप जा रहे थे, उसने पूंछ मारी, कपड़े गंदे हो गए, आप क्या करेंगे? बैल से बदला लेंगे क्या? कहेंगे इतना समय कौन खराब करे, चुपचाप निकल लो। दो चार ये बात कह देंगे, म्यूनिसिपैलिटी ध्यान नहीं देती, आवारा पशु घूमते रहते। आप सोए हुए हो, मच्छर ने काट लिया, FIR दर्ज कराएंगे कहीं? मान लीजिए आप किसी धर्मशाला में गए और पुरानी धर्मशाला थी, रात को सोए और छत के ऊपर से थोड़ी सी सीमेंट का टुकड़ा टूट के गिर गया, क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे धर्मशाला के साथ, धर्मशाला के केयरटेकर के साथ? नहीं ना। लेकिन मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति है और आप सोए हुए थे और गलती से उसे पंखा चल गया और हमको थोड़ी सी हवा लग गई, तो हम क्या करते हैं? सहन करते हैं क्या? मतलब हमने पशु को सहन किया, मच्छर को सहन किया, और प्रकृति की उस एक अकस्मात घटना को सहन किया, हम चुप रहे, लेकिन हमने किसको सहन नहीं किया? आदमी को सहन नहीं किया। उसके लिए मन में क्या आएगा, देखो मैं सोई हुई थी, जानबूझ के पंखा चला दिया ताकि मुझे ठंड लगे, इसे पता नहीं था मैं सोई हुई थी। सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट किसके बारे में आएंगे? किसके बारे में आएंगे? व्यक्ति के बारे में। और हमें बैल के साथ कितनी देर रहना है, मच्छर के साथ कितनी देर रहना है, धर्मशाला में कितनी देर रहना है, सबसे लंबा पीरियड किसके साथ रहना है? व्यक्ति के साथ रहना है। और हम उसी को सहन नहीं करते हैं। परिणाम क्या निकलता है? व्यक्ति की व्यक्ति से दूरी, व्यक्ति की व्यक्ति से शत्रुता, व्यक्ति की व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी। और यही हमारे समाज की, परिवार की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सहना ही सोने का गहना है। तो भाइयों और बहनों, सहन करने वाला कमजोर नहीं होता, सहन करने वाला विशाल दिल होता है, उसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, 8 साल की होगी, और उसका भाई है 2 साल 3 साल का, और उसको कंधे पे बिठा के वो भी चढ़ रही है। तो स्वामी जी को बड़ी दया आई। स्वामी जी ने कहा, ए लड़की, इतना सारा बोझ उठा करके और तू पहाड़ी चढ़ रही है, मैं तो खाली हाथ भी थक रहा हूं, ये बोझ क्यों उठा रखा है? तो लड़की इधर देखती है, उधर देखती है, उधर देखती है, कहती है, बोझ स्वामी जी, बोझ कहाँ है? बोला, ये तुम्हारी पीठ पे रखा है, ये बोझ नहीं है। कहती है, नहीं नहीं, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। जहां मेरापन है, जहां अपनापन है, जहां प्रेम है, वहां हम 3 किलो वजन भी छोटी आयु में उठा लेते हैं। और जहां प्रेम नहीं, वहां कोई व्यक्ति कह दे कि भाई ऊपर तक ये एक पानी की 50 ग्राम की बोतल ऊपर तक ले जाओ, तो भी हम क्या कहते हैं? नहीं जी, मेरे तो घुटनों में दर्द है, मेरे से खुद नहीं चला जाता, मैं पानी कहां से उठाऊंगा? तो सहन करने की शक्ति वहां आती है जहां प्रेम होता है, सहृदयता होती है, अपनापन होता है। तो हम जितना इस प्रेम को बढ़ाते जाएंगे, सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। अगली शक्ति है समाने की शक्ति। आप समुद्र देख रही हैं और समुद्र में लहरें उठ रही हैं। समुद्र में अद्भुत समाने की शक्ति है। पहले समाने की शक्ति का अपन अर्थ समझेंगे। समाने का अर्थ ये होता है कि कोई अच्छा दे या बुरा दे, हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके हम न्यूट्रल हो गए, साक्षी हो गई, न्यारे हो गई, डिटैच हो गई। जो एक्सेप्ट किया उसका हम पे असर भी नहीं आया, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया। जैसे समुद्र क्या करता है, दिशा दिशा से नदियां आती हैं और समुद्र में समा जाती हैं। उन नदियों के साथ बह करके कुछ अच्छी चीजें भी आती होंगी और कुछ किचड़ा भी आता होगा दुनिया भर का, लेकिन समुद्र अच्छी बातें भी एक्सेप्ट करता है, सब कुछ एक्सेप्ट करता है। जब नदियां समुद्र में गिर जाती हैं तो समुद्र का ऊपर का तल देखिए, एकदम स्वच्छ, और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका ऊपर का तल कितना चमकता है। किसी को पता थोड़े पड़ता है कि इसमें इतनी गंदी नदियां गिरी हुई। एक्सेप्ट किया और समुद्र डिटैच हो गया, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं, इसको कहते हैं समाने की शक्ति। जीवन में अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं, हम उनको एक्सेप्ट करें लेकिन उनसे प्रभावित ना हो। बताते हैं कि एक बार समुद्र के किनारे एक बच्चा खेल रहा था, एक लहर आई और उसकी चप्पल ले गई, तो बच्चे ने समुद्र के किनारे लिख दिया, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के किनारे एक मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था, अभी तैयारी कर रहा था, लहर आई और एक मछली आ गई, तो मछुआरे ने मछली उठा ली और लिख दिया, समुद्र पालनहार है। उसी के किनारे एक व्यक्ति लहरों में पांव डुबो करके बैठा था और लहर आई और 2 मोती ले आई। उस व्यक्ति ने वो दोनों मोती उठा लिए और उसने समुद्र के किनारे लिख दिया, समुद्र दाता है। इन्होंने जो कुछ लिखा था ना, लहरों ने आकर के वो मिटा दिया और समुद्र अपने उसी रूप में है। अब आप बताइए, समुद्र चोर है कि पालनहार है कि दाता है? हमने कुछ भी लिखा, समुद्र अपना काम कर रहा है, उस पर कोई असर नहीं। इसको कहते हैं समाने की शक्ति। कोई हमें अच्छा कहे तो भी बाबा, कोई बुरा कहे तो भी बाबा, क्योंकि कहने वाले के कहने से ना मैं अच्छा बनूंगा ना मैं बुरा बनूंगा, मैं तो जो हूं वही रहूंगा। इसलिए मुझे अपने स्वमान में टिक करके रहना। समाने की शक्ति जहां होती है वहां शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और समाने की शक्ति नहीं होती है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। समाने की शक्ति से टूटते हुए परिवार जुड़ जाते हैं। एक बार एक परिवार में एक बहू आई और सास ने कहा, बेटा आज खाना तेरे को बनाना है। वो डरती डरती रसोई में गई, कुछ चीजें ढूंढती है, कुछ का पता नहीं है, बहुत ध्यान लगा के देखना पड़ता है कहाँ क्या है। जैसे तैसे खाना बना दिया और खाना पूरा हुआ तो सास किचन में गई कि बेटा मैं देखूं तो सही तूने कैसा खाना बनाया। चम्मच लेकर के चखना चालू किया तो देखा कि सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है। बोली कुछ भी नहीं। उसने कहा, खाना बनाते बनाते तुम थक गई, अब तुम आराम कर लो, परोसने का काम मैं करूंगी। ज्वाइंट फैमिली था, सबसे पहले घर का बुजुर्ग आया, उसकी थाली में खाना डाला, सब्जी डाली और रोटी की ग्राही जैसे ही मुंह में लेके गया तो कहता, आज सब्जी तो जहर लगती है, किसने बनाई? सास कहती है, मैंने बनाई, रोज मैं ही तो बनाती हूं, कौन बनाएगा? बुलाए तो खाई नहीं जा रही। कोई बात नहीं है, तू मलाई के साथ खा लो। कटोरी में मलाई डाल के दी, उसको भेज दिया। उसके बाद बड़े वाला भाई आया, उसने भी यही बोला, आज तो सब्जी में नमक इतना है मुंह में ही नहीं जा रही। तो कहती है, देख बेटा आज मेरे से गलती से नमक डल गया, तुमको तो आम का अचार बहुत पसंद है ना, चल तुमको आम का अचार देती हूँ, उसके साथ आज खा के चले जाओ। वो भी गया। मंझला भाई आया, उसने भी ऐसे ही बोला। उसको भी कहती है, बेटा नमक तो मेरे हाथ से ज्यादा गिर गया, और तुम ऐसा करो दही के साथ खा के चले जाओ। तो सैब को उसने खिला पिला के चौका पूरा किया। अब बहू तो अंदर सब कुछ सुन रही थी, कहती है, मेरी सास तो बड़ी अच्छी है, मेरी माँ भी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं गलती करती थी तो दो चार डांट तो लगा ही देती थी, पर आज देखो इसने सारा का सारा काम मेरा संभाल लिया। नहीं तो घर के लोग कहते, पहले दिन बहू जहर खिला रही है, जिंदगी भर जहर ही खिलाएगी, मेरा तो नाम ही निकल जाता, पर देखो मेरी सास ने कितने अच्छे से मुझे संभाल लिया। तो सास जब चौके से बाहर निकली तो बहू उससे लिपट गई और कहा, अम्मा पहले दिन तूने मेरी इज्जत रखी, मैं सारी जिंदगी तेरी इज्जत रखूंगी और मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर हम किसी की गलती को समा लेते हैं, माफ कर देते हैं, अगर उस गलती को फैलने से बचाते हैं और गलती करने वाले की इज्जत रख लेते हैं तो सदा काल के लिए वो हमारा मित्र बन जाता है। लेकिन अगर हम गलती को एक फन की तरह से इसको सुनाया उसको सुनाया उसको सुनाया, मजा ले रही हैं, चटकारे ले रही हैं, अरे पता आज उसने क्या किया, तो जिंदगी भर के लिए हम एक अच्छे व्यक्ति को शत्रु बना देते हैं। और गलतियां तो हम सबसे होती हैं। गलती को फैलाने से गलती कभी मिटती नहीं है। गलती को समा करके जब हम व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो वो गलती मिट जाती है। और ऐसा हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा हम नहीं करते, करते हैं। मान लीजिए एक माँ का बच्चा स्कूल से किसी का पेन चोर के ले आया और माँ को लाके दिखाता है, माँ ये देख कितना सुंदर पेन है, मैं अपने साथी के बैग से निकाल के लाया हूं। माँ को पता है बच्चा गलत है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन माँ मोहल्ले में समाचार नहीं फैलाएगी मेरा बेटा चोर है, ए बहन इधर आ एक बात बताऊं आज मेरा बेटा पेन चोर लाया। उस समय ये फन नहीं है, उस समय ये समाचार नहीं है, उस समय माँ के भीतर एक शुभ भावना है कि मैं इस बच्चे की ये आदत कैसे छुड़ाऊं। ये भगवान मंदिर में जाएगी, प्रार्थना करेगी, अंदर ही अंदर संकल्प करेगी, उसको कई पेन ला के देगी, बेटा अपने घर में पेन की कमी नहीं है, तुम किसी का पेन मत चुराओ बेटा, ये खराब आदत है। देखो इस समय वो कितनी दयालु, रहम दिल, कल्याणकारी बन गई, क्योंकि माँ और पुत्र का नाता ही ऐसा है। तो अगर हम एक पुत्र के लिए इतने कल्याणकारी हो सकते तो क्या हम सारे समाज के लिए नहीं हो सकते? हम अपने प्रेम का दायरा बढ़ा लें, हम अपनी शुभकामनाओं का दायरा बढ़ा लें, तो इस समाने की शक्ति हर व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर आ सकती है। अगली है परखने की शक्ति। इसमें दिखाया है कि एक जौहरी एक हीरे को परख रहा है, सच्चा हीरा है कि दाग वाला हीरा है। अब हमारे में से तो कोई जौहरी है नहीं, और अगर हीरे की बात करें तो हमारे में से बहुत तो ऐसे हैं जिन्होंने हीरा ही नहीं देखा। तो भला इस परखने की शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। हम भले हीरे नहीं परखते पर हमें इंसान तो परखने पड़ते हैं ना, और इंसान ही तो असली हीरा है भगवान का। कब कब परखने पड़ते हैं? आपको अपनी दुकान पे कोई साझेदार रखना है, आपको अपने खेत में कोई पार्टनर रखना है, आपको गौशाला में कोई सेवादार रखना है, तो क्या वो सेवादार को आप परखेंगे नहीं? परख के ही तो रखेंगे ना। इससे और आगे चलिए, और नजदीक रिश्ता, आपको अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है, परखेंगे कि नहीं? आपको अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढनी है, परखेंगे कि नहीं? आजकल आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल विज्ञापन आते हैं, उनमें क्या लिखा होता है। मैंने तो एक बार गलती से अखबार पढ़ लिया, मैंने देखा भी दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है। उसमें लिखा हुआ था, चाहिए एक गोरी चिट्टी ब्राह्मण कुल की लड़की, इतना लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा अच्छा आजकल शादियां ऐसी होती हैं कि भाई गोरी लड़की हो, चिट्टी लड़की हो, और भाई ब्राह्मण कुल की हो, और थोड़ी लंबाई भी लिखी हुई थी 5 फुट ऐसा कुछ हो। तो उसी दिन आश्रम पे एक महिला आ गई, बहन जी 2 मिनट मेरे से बात करो, मैं बहुत परेशान। मैंने कहा किस बात से, क्या हो गया माता जी? घर में सब ठीक ठाक है, बेटा बहू हाँ पूरा परिवार भरा पूरा है, किससे परेशान हो? बहू से परेशान। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है 9 बजे उठती है, काम नहीं करती है, कहना नहीं मानती है, जो मन में आता है वही खाती है। तो मैंने कहा आपने बच्चे की शादी करने से पहले लड़की देखी नहीं थी क्या? बोली बहन जी वो बस ऐसे ही। मैंने कहा कहीं अखबार के थ्रू तो शादी नहीं हुई थी? बोला हाँ हाँ वही। मैं बोला वही गोरी चिट्टी 5 फुट वाली। बोली हाँ। तो मैंने कहा तुमने कंडीशन तो लगाई नहीं थी कि बहू चाहिए 4 बजे उठने वाली, तुमने तो कंडीशन लगाई थी गोरी चिट्टी। अब मैंने कहा वो गोरी है कि नहीं? बोला गोरी तो खूब है मैदे जैसी। तो मैंने अब तुम थाली सजा के आरती उतारो, ओम जय गोरी चिट्टी, तुमको जो चाहिए था वो मिल गया। मैंने कहा 5 फुट की है कि नहीं? बोला हाँ पूरी 5 फुट ही है। तो ओम जय 5 फुटी, अब आरती उतारो। तो आपने क्या देखा? परख शक्ति की यहां जरूरत है। अच्छा मान लो हम आमने सामने भी बुला करके देखते हैं तो भी क्या देखते हैं? माफ करना, चमड़ी और दमड़ी। चमड़ी गोरी चाहिए, दमड़ी मोटी चाहिए। क्या हमने बच्ची के गुण देखे, चरित्र देखा? कितनी सुलक्षणी है, कितनी नम्रचित है, कितनी कर्मठ है, कितनी गृह कार्य में दक्ष है? हमने तो उसका श्रृंगार देखा, श्रृंगार तो पार्लर वाले करते हैं, और आजकल तो जन्म से ही लड़कियां श्रृंगार करना सीख जाती हैं। कहती हैं भाई ससुराल वालों को श्रृंगार पसंद आ जाए तो वाह वाह, बाकी कुछ सीखो या ना सीखो। और ससुराल वाले सिंगार पे लट्टू हो जाते हैं, ले जाते हैं। तो हमने क्या परखा? हमने केवल आवरण देखा, आवरण के भीतर छिपी आत्मा को देखा क्या? तो सबसे बड़ा हीरा इंसान है। अच्छा, हम लड़का देखने गए, वहां भी ऐसा ही एक विज्ञापन होता है, चाहिए एक लंबा 6 फुटा गोरा और आमदनी कितने अंकों में? 6 अंकों में, 6 अंकों में आमदनी, ऐसा लिखा रहता है। अब शादी हुई, माँ बेटी का हाथ पकड़ के आश्रम पे आ गई, बहन जी इसको ज्ञान सुनाओ। भी क्या हो गया? ये तो लगता है नई शादी की हुई है, अभी ये ससुराल जाएगी क्या ज्ञान सीखेगी? नहीं बहन जी, ये मना कर रही है। क्यों भाई? कहती है ससुराल अच्छी नहीं है। फिर मेरा वही सवाल कि भी तुम लोगों ने देखा नहीं था क्या? बहन जी वो जरा अखबार के थ्रू शादी हुई थी। तो मैंने कहा वो 6 अंकों में नहीं आमदनी है, लंबा गोरा चिट्टा लड़का नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? बहन जी उठते ही शराब बोतल मुंह से लगा लेता है, सारा दिन सिगरेट पीता है, घर में 2 बार नॉन वेज बनता है, मेरी बेटी तो वेज खाने वाली है। तो तुमने अखबार में लिखा क्यों नहीं कि नो सिगरेट, नो शराब, नो नॉन वेज, ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए? लिखा क्या हमने? तो हमने कहां परखा? एक व्यक्ति 4-5 साल गाय पालता है और फिर उसे बेचता है तो उस मालिक के आगे हाथ जोड़ के कहता है कि मैंने बहुत प्यार से गाय पाली है, मेरी गाय को ठीक से खिलाना, ठीक से पिलाना। देखता है कि कोई कसाई जैसा तो नहीं है, और हम 20 साल 25 साल पाली हुई बच्ची को बिना परखे यूं ही पकड़ा देते। तो भाइयों और बहनों, ये परख शक्ति बहुत जरूरी। आपकी दुकान का पार्टनर है, आपके घर का नौकर है, आपके गौशाला का नौकर है, बहुत सारे होते, वो भी परखना है कितना कर्मठ है, कितना चरित्रवान है, कितना गुणवान है। यहाँ एक गांव का सरपंच आया था, बोला मैंने 30 एकड़ गौशाला के लिए पंचायती जमीन गांव को दे दी और 8 लोगों को कहा कि तुम गौशाला में गवों की सेवा करो। मैं कहीं बाहर चला गया, वापस लौटा, देखने गया 8ों शराब में धुत थे। गवों के लिए जो पैसा आता था, जो आटा आता था, चारा आता था, बेच के शराब पी जाते थे और गवें बेचारी भूखी खड़ी रहती थी। केवल जमीन देने से नहीं होगा भाइयों, केवल पैसे देने से नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो व्यक्ति का चरित्र होता है। और व्यक्ति चरित्रवान हो तो बिना पैसे के भी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सामने उदाहरण है, एक व्यक्ति से शुरू हुई ब्रह्मा कुमारी संस्था 140 देशों में कैसे फैल गई? क्योंकि यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ एक एक हीरा है, कोहिनूर हीरा है। ये संस्था पैसे से नहीं बनी, ये उन कोहिनूर हीरों से बनी हुई है जो इतने कर्मठ हैं, जिनके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है, जो बिना कहे काम करते हैं और घंटों की गिनती नहीं है, 18 और 20 घंटे भी काम करते हैं, और केवल 2 जोड़ी कपड़े और 1 सिंपल चप्पल पहन करके वो 140 देशों के लोगों की यहाँ मेहमानबाजी करते हैं। नेक्स्ट है निर्णय शक्ति, तराजू। तराजू की एक बहुत बड़ी खूबी है, पार्शियलिटी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। आपने एक पलड़े में सोना रख दिया, एक पलड़े में मिट्टी रख दी, तराजू कभी ये नहीं सोचता कि मैं सोने वाले पलड़े को नीचे झुका दूं, वो तो बराबर वजन करेगा, उसके लिए मिट्टी और सोना बराबर है, उसको वजन करना है। इसको कहते हैं ठीक निर्णय। इसलिए जो न्याय की देवी होती है उसकी आंखों पे पट्टी होती है और हाथ में तराजू होता है, वो देख ना सके कि कौन मिट्टी जैसा है और कौन सोने जैसा है, उसे केवल निर्णय करना है। अगर हम किसी भी आधार पे जाति, कुल, धर्म, धन पर्दा झुका देते हैं तो वो कभी भी ठीक निर्णय नहीं होगा, वो पक्षपात होगा। और निर्णय केवल जज नहीं करते, हम अपने घरों में भी निर्णायक बनती हैं, अपने घरों में भी हम जज बनती हैं। कब कब जज बनते हैं? दो बच्चों का, दो भाइयों का झगड़ा हो गया तो माँ को जज बनना पड़ता है। अगर घर में छोटे भाई बहन का झगड़ा हो गया तो माँ बाप को जज बनना पड़ता है। अब क्या हमारे पास जजमेंट की ताकत है? ननद और भाभी में झगड़ा हो गया तो भी घर की जो सास है उसको जज बनना पड़ता है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी जजमेंट है कि हम तराजू की तरह से निष्पक्ष रह सके, हमारा पलड़ा किधर भी ना झुके? अब तो भारत की तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लेकिन हमने अपने बचपन में भी देखी वो तस्वीर और कहीं कहीं अब भी है। मान लो लड़के और लड़की का झगड़ा हो गया घर में, एक ही माँ के दोनों बच्चे, तो आम तौर पे पलड़ा किधर झुकता है? आम तौर पे सब जगह नहीं पर कहीं कहीं बेटे की तरफ पलड़ा झुकता है। अगर बेटे ने मारा बेटी को तो माँ कहेगी कोई बात नहीं बेटा तेरा भाई ही तो है, और अगर बेटी ने बेटे को मार दिया तो फिर तेरे को शर्म नहीं आती, तू भाई को मारती है। अब बताइए, लड़की को घर में ही न्याय नहीं मिला तो घर से बाहर कहाँ न्याय मिलेगा? फिर वही लड़की ससुराल में जाती है तो वो माँ कहती है कि मेरी बेटी की सास अच्छी नहीं है, और मैं पूछती हूँ तू कहाँ अच्छी थी? तो भाइयों और बहनों, खून का रंग तो दोनों का ही लाल है, ऑक्सीजन दोनों एक जैसी ही लेते हैं, सुई चुभाओ तो दोनों को दर्द एक जैसा होता है, फिर ये पार्शियलिटी क्यों? और हम अपनी खून के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सके तो फिर बाहर न्याय की कौन हमसे अपेक्षा कर सकता है? मैं एक स्कूल में गई, बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में कुछ बता रही थी। एक बच्ची थोड़ी मोटी भी थी और सांवले रंग की थी, वो आगे आगे बैठी थी। मैंने उससे ऐसे ही कोई नैतिक मूल्यों से संबंधित सवाल पूछ लिया, जैसे कई बार हम पूछ लेते हैं कि बेटा पांच गुणों के नाम बताओ, अच्छे गुणों के, पांच बुराइयों के नाम बताओ, तो ऐसे पूछ लिया। कई बार हम पूछ लेते हैं ये पोज किसका होता है, ये पोज किसका होता है, तो बच्ची को उत्तर नहीं आया। पीछे, बिल्कुल पीछे एक बच्ची बैठी थी, उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसको आगे बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई और फिर मैडम को मैंने बोला कि देखो बच्ची कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन मैडम का तो मुंह ही उतर गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैडम के क्लास की एक बच्ची की मैं महिमा कर रही हूं तो मैडम का मुंह क्यों उतर गया। खैर, मैंने अपनी बात पूरी की, उसके बाद मैडम ने कहा चलो चलो ऑफिस में चलते। मैं जैसे ही उसके साथ ऑफिस में गई तो वो बच्ची जो आगे आगे बैठी थी, थोड़ी मोटी थी, सांवले रंग की थी, वो भी आ गई और मैडम कहती है ये मेरी बेटी है, बहन जी इसके सिर पे हाथ रखो, इसको आशीर्वाद दो। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया। फिर मेरे मन में आया कि ये मैडम जब अपने घर में होती है तो एक बच्ची या दो बच्चों की माँ है, लेकिन जब ये मैडम स्कूल में आ जाती है तब भी क्या ये दो ही बच्चों की माँ रहती है? तब तो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सारे इसी के बच्चे। तो ये माँ के रूप में एक बहुत अच्छी माँ हो सकती है, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, लेकिन एक टीचर के रूप में अगर ये इंटेलिजेंट बच्चे में और अपनी बच्ची में कंपैरिजन करती है तो ये एक अच्छी टीचर, न्यायकारी टीचर सिद्ध हो पाएगी क्या? तो केवल कोर्ट में न्याय की जरूरत नहीं है, कदम कदम पर समाज के हर तबके के साथ न्याय की जरूरत। आप महाभारत को याद कीजिए, महाभारत का एक प्रसंग है कि जब अर्जुन ने तीर मारा, जब गुरुकुल में उनकी परीक्षा हो रही थी, मछली की आंख में तो बाद में तीर मारा, एक पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया जिस डाली पे बैठी थी, चिड़िया को बचा करके उस डाली के पत्ते को तीर मारना था। अर्जुन ने तीर मारा और गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी बहुत महिमा की कि मेरा एकमात्र, मेरी सारी विद्या को ग्रहण करने वाला मेरा शिष्य अर्जुन है। तो अश्वत्थामा जो उसका बेटा था, उसका भी मुंह लटक गया। तब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को बुलाया, कहा देख, एक पिता के रूप में मेरी संपूर्ण संपत्ति का वारिस तू है, तू मेरा इकलौता बेटा है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन जब मैं शिक्षक की कुर्सी पे बैठता हूं तो 101 बच्चे मेरे हैं और मेरी विद्या पर 101 का अधिकार है। तुम अर्जुन से ईर्ष्या क्यों करते हो? एक शिक्षक के रूप में उसने मेरी विद्या ग्रहण की, मैं उसकी महिमा कर रहा हूं, इसलिए तुमको ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब हम शिक्षक हैं, जब हम ऑफिस में हैं, जब हम बिजनेस में हैं, तब समाज के एक बड़े तबके से हम जुड़ जाते हैं, जब हम घर में हैं तो घर के 2-4 लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन घर से बाहर आकर के भी अगर हम उन 2-4 लोगों की पिक्चर बुद्धि में रखें और समाज के लोगों के साथ न्याय न करें तो क्या होगा? इसलिए राजयोग कहता है तराजू की तरह से निष्पक्ष बनिए, और ये शक्ति तब आती है जब हम परमात्मा के साथ अपने को कनेक्ट करते हैं। तराजू की सुई जब बिल्कुल बीच में होती है, एकाग्र होती है, तब हम कहते हैं अब तुल गया। तो हमारी बुद्धि रूपी सुई भी जब एकाग्र होती है और जब परमात्मा से कनेक्ट होती है, तब हम कहते हैं कि अब हमने ठीक न्याय किया, क्योंकि परमात्मा के सब बच्चे भाई भाई हैं, सब आत्माएं हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर मेल फीमेल छोटा बड़ा नहीं। जब हम आत्मा को देखते हैं तो आत्मा के नाते सब एक समान। हमारे पास यहाँ एक जज साहब आते थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पुरानी बात है। तो जब हमने उनको ये शक्तियां समझाई तो उन्होंने कहा बहन जी, मैं बड़ी ऑनेस्टी से आपको एक बात बताता हूं, मैं जज की कुर्सी पे बैठता हूं और मैं ब्राह्मण हूं। अगर किसी जाट और ब्राह्मण का केस मेरे सामने आता है, मैं आपको सच बताता हूं, ब्राह्मण होने के नाते मैं ब्राह्मण का फेवर करता हूं। तो मैं तो बहुत बड़ा अपराध करता हूं। मैंने कहा इसीलिए तो कहती हैं कि हम केवल फैसला करते हैं, न्याय तो भगवान करता है। और फिर उसने कहा बहन जी, आज मुझे समझ में आया कि ब्राह्मण के तन में भी आत्मा है और जाट के तन में भी आत्मा है, दोनों आत्माएं परमात्मा के बच्चे भाई भाई एक ही घर से आई, तो इसलिए मुझे किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, मैं आत्मा को देख करके न्याय करूंगा तो वो न्याय सर्वश्रेष्ठ। तो भाइयों और बहनों, आज हम भी ये पाठ पक्का करें कि हम आत्मा को देख करके डिसीजन लेंगे। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। चित्र में एक डेड बॉडी दिखाया है। मानव के जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, गरीबी है, बीमारी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी, जिसको सहन करना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उस परिस्थिति का नाम है किसी नियर एंड डियर की मृत्यु। और उस समय हमें ऐसे लगता है कि ये ऐसी कमी है जिसको हम कभी भी भर नहीं पाएंगे, और इस कष्ट में कई लोग आपा खो देते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग अपने कर्तव्य से भी विमुख हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। इसका हम सामना कैसे करें। कोविड के टाइम भी ये परिस्थिति बहुतों के सामने आई। भाइयों और बहनों, राजयोग हमें बताता है कि हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है और इस रंगमंच के ऊपर हमें किरदार निभाने के लिए भेजा गया है। हमारी जो मित्र संबंधी हैं वो सब कौन है? वो भी किरदार निभा रही, रोल प्ले कर रही। वो हमारी च्वाइस नहीं। मैं एक बहन हूं तो मैंने चूज नहीं किया कि मेरा भाई कौन बनेगा। मैंने अपने माता पिता को भी चूज नहीं किया। क्या ये हमारी च्वाइस है? हाँ, बड़े होकर के आप पति पत्नी चूज करते हो, लेकिन माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा मौसी, जो हमसे बड़े, हमने नहीं चुना। और माता पिता ने पुत्र पुत्री को भी नहीं चुना जो आ गई। इसका मतलब क्या है? कौन आया? इसके पीछे कौन सी फिलोसॉफी काम करती है? इसके पीछे हम कहते हैं कि हमारे संबंध कर्म जन्य है। कर्म जन्य का मतलब क्या है? जैसा कर्म था उस कर्म की कीमत के अनुसार वैसा ही संबंध मिल गया। जैसे हमारे यहां जो चीजें उनको हम कहते हैं पूंजी जन्य। पूंजी यानी कि धन, धन जन्य। आप मोबाइल की दुकान पे गए, तीन लोग एक साथ गए, भैया मोबाइल दिखा दो, तो वो पूछता है कितनी रेंज का दे दूं। अब एक ने कहा भैया 20,000, दूसरे ने कहा 10, तीसरे ने कहा भैया कोई पुराना हो 500, 700, 1000 तक आ जाए दे दो। तो तीनों को तीन मोबाइल मिले, अलग अलग प्रकार के। ये मोबाइल पूंजी जन्य है। तीनों को दुकानदार से कोई शिकायत नहीं है। 20,000 वाले का मोबाइल 5 साल तक चल रहा है, 1,000 वाले का थोड़े दिन के बाद खराब हो गया, क्योंकि उतनी ही पूंजी थी। मोबाइल उसी प्रकार की योग्यता वाला था। भाइयों और बहनों, हमारे कर्मों के अनुसार, कर्मों की भी बहुत बड़ी पूंजी है, उसके अनुसार हमें माता पिता, भाई बहन, संबंधी मिलते हैं, मित्र मिलते हैं। और हम कहते हैं कि हमने पति पत्नी का चुनाव किया, वास्तव में चुनाव भी कर्मों के अनुसार ही होता है। नहीं तो कई बार 10 लड़कियां रिजेक्ट होके 11वीं लड़की लाई जाती है और वो भी फिर बाद में रिजेक्शन जैसी हो जाती है। तो किसको दोष दें? अगर कोई चला गया तो किसको दोष दें? हम कहते हैं भगवान ने हमारा बच्चा ले लिया। भगवान ने हमारे वाला ही क्यों लिया? बच्चा तो पड़ोसी के यहां भी था, तो क्या भगवान का हमसे प्रेम नहीं है? हमारा पिता नहीं है क्या? आप भी पिता हैं क्या? आपने दो बच्चों के बीच भेद करते हैं? तो वो जो सुप्रीम बाप है, न्यायकारी है, वो दो के बीच में भेद कैसे करेगा कि एक का बच्चा है और दूसरे का ले लिया? तो नंबर एक, कर्मजन्य नाते हैं, स्थाई नाते नहीं हैं। और इसीलिए कहा गया झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। रिश्तों को ये क्यों नहीं कहा गया कि सच्ची काया, सच्ची माया, सच्चा सब संसार? सच्चा मतलब परमानेंट, जब तक आप रहेंगे वो भी रहेंगे। झूठा मतलब अस्थाई, कब आप उसको छोड़ दें और कब वो आपको छोड़ दे, विदाउट वार्निंग, नो गारंटी कार्ड। किसकी जेब में गारंटी कार्ड है भाई कि मैं इतने साल रहूंगा और मेरा भाई बहन माता पिता इतने साल रहेगा? है क्या? तो जिसकी गारंटी नहीं वो चीज कैसी होती है? बाजार में भी बिना गारंटी की चीज को क्या नाम दिया जाता है? एक बहुत कॉमन शब्द, नकली। उसी नकली को यहां कहा गया है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। बाजार की भाषा में उसको नकली कहते, जिसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी टूट जाए, कभी भी खराब हो जाए, कभी भी साथ छोड़ जाए। और जीवन की भाषा में उसे झूठा कहा गया है, कभी भी साथ छोड़ जाए, किसी भी तरीके से घर छोड़ जाए, किडनैपिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, अनिश्चित है सब कुछ। सच्चा कौन है? सच्चा एक तू है। तब हम उंगली का इशारा ऊपर की तरफ करते हैं, तू ही सच्ची माँ है, सच्चा पिता है, सच्चा बंधु है, सब देख लिए, धोखे हैं सब दुनिया में, सच्चा केवल एक तू। तो जब सच्चे की बात आती है तो ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है। एक और बात, कई बार हम कहते हैं कि अभी तो बच्चे ने आंख ही खोली थी और बच्चा चला गया। भाइयों और बहनों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कर्म गति है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा अपराधी है, पाप करता है, पाप की बहुत प्रकार की विधियां हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए उसने जहरीली शराब बेची, पी करके 30 लोग मर गए। मान लीजिए उसने कोई उग्रवादी आतंकवादी गतिविधि की और 30-40 लोग मर गए। ऐसी लोगों को दुख देने वाली एक्टिविटी एक व्यक्ति ने की। अब उसके ऊपर 30-40-50 लोगों की हत्या का मुकदमा है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? एक फांसी देती है एक हत्या के बदले, हमारी पेनल कोड। अब उसने की है 50, हमने उसकी एक फांसी की, बाकी कितनी रह गई? 49 बाकी रह गई ना। हम तो एक जीवन था तो एक ही दे सकते थे, भारत की जो पेनल कोड है। अब इस 49 का हिसाब कौन चुकतू करेगा? चुकतू होगा, पर कौन करेगा? नियति करेगी। कैसे करेगी? वो व्यक्ति एक माँ के गर्भ में जाएगा, 6 महीने उल्टा लटकेगा, 9 महीने अवधि नहीं होती, 6 ही होती है, वो आत्मा 6 महीना उल्टा लटकेगी, उसके बाद बाहर निकलेगी और बाहर निकलते ही फिर आंखें बंद हो जाएंगी। घर के लोग कहेंगे हमारा बच्चा गया, अरे तुम्हारा था ही नहीं, वो तो सजा भोगने आया था। और इस प्रकार वो 49 माओं के गर्भ में जाएगा, उल्टा लटकेगा, आंख खोलेगा और फिर बंद हो जाएगी। ये क्या हो रहा है आप और हम नहीं जानते, लेकिन ये हिसाब चुकतू हो रहा है। कहते हैं जो मेरा है सो जाए नहीं, और जो जाए वो मेरा नहीं। अरे मेरा होता तो वो जाता ही नहीं, वो मेरा था ही नहीं। अब एक और प्रश्न पैदा होता है कि उस माँ ने क्या किया? उस माँ का क्या दोष था? माँ का भी दोष था। वो माँ उन उग्रवादियों को धन सप्लाई करती थी, पिछले जन्म में हथियार सप्लाई करती थी, उनको घर में शरण देती थी, किसी भी रूप में उनकी दोस्त थी, मित्र थी, भाई थी, अर्थात गलत एक्टिविटीज में उसका कोऑपरेशन था। तो यहां भी सजा भुगतवाने में भी उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये कर्मों की गहन गति। इसलिए जिसने देह त्यागा वो आत्मा आज भी है, सदा रहेगी, हमें उसके लिए दुखी नहीं होना है, अपने मन को इतना मजबूत बनाना है, उसके लिए दुआ करनी है कि वो जहां भी जाए शांति में रहे, जीवन उसका अब भी है, जहां भी जाए सुखी रहे। जाने वाले को हमें सुख और शांति की शुभकामनाएं देनी है, न अपने को दुखी करना है, न दूसरे को दुखी करना है, इतनी ताकत अपने भीतर पैदा करनी है। इसको कहते हैं सामना करने की शक्ति, आत्मबल, मनोबल, आत्मशक्ति। और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आगे इसे लंबी आयु मिले। भाइयों और बहनों, लंबी आयु कैसे मिलती है? कोई बच्चा है, सेवा करता है बड़ों की, तो बड़ों के मुख से ऑटोमेटिक निकलता है जुग जुग जियो, फलो फूलो। लेकिन आज के जमाने में कितने लोग ऐसे काम करते हैं जो किसी के मुंह से निकले जुग जुग जियो। तो आयु का वरदान ही नहीं है हमारे पास, दुआएं ही नहीं है जो हम लंबे जिए। रेयर लोग हैं जो लंबे और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि हम ऐसे कर्म ही नहीं कर रहे जो किसी की दुआएं आएं और मेरी आयु बेल की तरह से बढ़े। तो अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारे सराउंडिंग में आयु लंबी हो, तो हम दुआएं लें, दुआएं दें, ताकि अकाल मृत्यु का राक्षस हमारे सामने आए ही। तो ये सामना करने की शक्ति है। कर्म फिलोसोफी को जब हम समझ जाते हैं तो हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है। बताते हैं कि कोई गई हुई आत्मा, एक बच्ची थी, वो अपनी माँ को सपने में दिखाई दी। तो मृत आत्माएं जा रही थी और सबके सिर पे मटका था और मटके में ज्योति जल रही थी, लेकिन उसी बच्ची के सिर पे जो मटका था उसमें ज्योति नहीं जल रही थी। तो माँ ने पूछा, बेटा सबकी ज्योति जग रही, तुम्हारी बुझी हुई क्यों है? तो उसने कहा कि माँ तू मेरे लिए रोती बहुत है और तेरे जो आंसू हैं वो इस ज्योति के ऊपर गिर गए और वो बुझ गई। तुम रोना बंद करो तो मेरी भी ज्योति जगेगी। तो भाइयों और बहनों, हम उस मृत जाने वाली आत्मा की ज्योति को जागृत रखें, बुझने ना दें। ये हम पीछे रहने वालों का फर्ज। और उसने जो अधूरे काम छोड़े हैं उनको पूरा करें, ये उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर कोई यूथ छोटे बच्चे छोड़ के चला गया तो हम मिल करके उन बच्चों की पालना करें। अगर कोई अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ गया तो हम मिल करके उस बूढ़ी माँ की पालना करें, उसके अभाव को भर दें। अगली शक्ति है सहयोग की शक्ति, और इसमें उंगली दिखाई है, एक बहुत बड़ा पर्वत उठ रहा है। हमारी माइथोलॉजी में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए गोप गोपियों ने केवल एक एक उंगली लगाई और इतना बड़ा पर्वत उठ गया भगवान के साथ, भगवान की श्रीमत पर। हम सोचते हैं कि शायद ये कोई पर्वत था। भाइयों और बहनों, गोवर्धन का अर्थ है गवों का वर्धन, गवों की बढ़ोतरी। और जब गवों की बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है? हमारी संस्कृति है कृषि की और पशुपालन की। पुराने टाइम में उस व्यक्ति को सबसे अमीर माना जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा पशु हो, और नाम दिया जाता था पशुधन, गोधन। एक श्लोक भी है ना, गोधन बाजी धन और रतन धन खान। तो गोधन माना गवों का धन, बाजी धन माना घोड़ों का धन। वो हमारी संस्कृति थी। तो गोवर्धन अर्थात हम सभी गवों की पालना करें, पोषण करें, उनकी वृद्धि करें, उन्हें सुख चैन से जीने लायक वातावरण बनाएं, वो है असली गोवर्धन उठाना। और वो कब होगा? गवें बढ़ेंगी, पशुधन बढ़ेगा, मतलब भारत में फिर से श्री कृष्ण का राज्य आएगा, क्योंकि कृष्ण के राज्य में ही तो गवें सुख शांति से रहती थी। और श्री कृष्ण की गवें कितनी सुंदर थी, देखते देखते मन नहीं भरता। आज तो गौ माता को हम सड़कों पे देखते हैं तो दिल दहल जाता है। गौशालाओं में भी उनकी हालत बहुत सुंदर नहीं है, बहुत गौशालाएं अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन कई गौशालाओं में गवों के नाम से जो कुछ आता है उसमें करप्शन भी होता है। तो हम सब मिल करके अपनी उंगली का सहयोग दे करके फिर से इस भारत को स्वर्ग बनाएं, ताकि फिर से गवों का वर्धन हो, हर पशु का वर्धन हो, और फिर से हम पशु धन को महत्व दें। और एक उंगली लगाने का अर्थ क्या है? इस उंगली के तीन पोर्शन, अच्छे कार्य के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, चाहे तन लगाइए, चाहे मन लगाइए, चाहे धन लगाइए। अब कोई कहेगा बहन जी मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे पास तन की शक्ति नहीं। आप बैठ करके अच्छे वाइब्रेशन तो फैला सकते हो। नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए। ये भी भारत को स्वर्ग बनाने में पॉजिटिविटी का योगदान, मन का योगदान, धन का योगदान। हमारा जो धन व्यसनों में जा रहा है, फैशन में जा रहा है, मुकदमों में जा रहा है, दिखावे में जा रहा है, हम उस धन को बचा करके उन कल्याणकारी कार्यों में लगाएं जिससे भारत की जनता सुखी हो, जिससे भारत की जनता की गरीबी मिटे, जिससे भारत की जनता को हेल्थ मिले। ये धन का योगदान। और तन के द्वारा हम पहले अपने घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को स्वच्छ रखें और इन इंद्रियों के द्वारा कोई पाप कर्म न करें। सबसे पहले आंख प्रण करके जाएं कि हम किसी को कुदृष्टि से नहीं देखेंगे। ये कुदृष्टि एक भयंकर पाप है, चाहे नर की चाहे नारी की। और इस कुदृष्टि से डरते हैं आप। देखते हो माताएं बहनें कई बार कहती हैं भाई उधर के आगे से नहीं गुजरना, उस आदमी की दृष्टि बहुत गंदी है, डर लगता है। तो दृष्टि ने देवता के बदले उस व्यक्ति को डरावना बना दिया, राक्षस बना दिया। एक इंद्री हमें राक्षस बना देती। तो क्या हम इस छोटी सी इंद्री को कंट्रोल नहीं कर सकते? हम जिसको भी देखेंगे एक देवी की नजर से देखेंगे, माँ की नजर से देखेंगे, बहन की नजर से देखेंगे, एक पूजनीय शक्ति की नजर। हम चाहते हैं हमारी बेटियों को लोग ऐसी नजर से देखें, तो दूसरों की बेटियां भी तो हमारी बेटियां हैं। तो ये प्रण हमको यहां से करके जाना है, तब हम इस भारत को स्वर्ग बना सकेंगे। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी को हम पूजनीय दृष्टि से देखते हैं वही स्वर्ग। कानों के द्वारा चुगली पर चिंतन नहीं सुनेंगे, मुख के द्वारा एक की दो बात नहीं बनाएंगे, नहीं तो वाणी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ा प्रदूषण है। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच के बोलेंगे, और जहां दो शब्दों में काम चल जाए वहां चार शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे हम पैसे की बचत करते हैं ऐसे हम वाणी की शक्ति को भी बचाएंगे। हाथों के द्वारा परोपकार के ही काम करेंगे, किसी को आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, किसी के सिर पे हाथ रखेंगे, किसी को दान देंगे, लेकिन गलत इशारे नहीं करेंगे, हाथों से ताने नहीं मारेंगे किसी पे, चोरी नहीं करेंगे, छीना झपटी नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। ये है हाथों की सेवा। और पांव के द्वारा कहते हैं देखो दो भाई थे, एक था राम और भरत और एक था रावण और विभीषण। रावण ने अपने भाई को लात मारी तो लंका उजड़ गई, और भरत ने क्या किया, भाई को नहीं सिंहासन को ठुकराया, भाई को गले लगाए तो अयोध्या बन गई, अर्थात जहां कभी युद्ध नहीं होता। तो हम किसी को ठुकराएंगे नहीं, किसी को ठोकर नहीं लगाएंगे, सबको अपनाएंगे। तो ये है सहयोग की शक्ति। उसके आगे दिखाया संकीर्ण करने की शक्ति, और उसमें कछुआ दिखाया है। कहते कछुए की आयु 150 साल होती है, और ऐसा भी बताया जाता है कि ट्रेन के पहिए के नीचे भी अगर आप कछुए को रख दो ना तो कछुए का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई कछुए में ऐसी क्या खासियत है इतनी लंबी आयु? कौन सी औषधि खाता है? बहुत बढ़िया औषधि खाता है, वो औषधि हम यहां से लेके जाएंगे आज। उस औषधि का नाम है इंद्रियों को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुए को आपने देखा होगा, कुछ खाना होगा तो मुख बाहर निकालेगा और खाने के बाद उस हार्ड शेल के अंदर मुख को ले जाएगा। चलना होगा तो पांव बाहर निकालेगा और उसकी गंतव्य स्थान आ गया तो फिर सिकोड़ करके अंदर कर लेगा। तो उसके कारण उसकी जो इंद्रियां हैं वो लॉन्ग लिविंग हो जाती हैं। पांव, हाथ, मुख और शेल के अंदर सुरक्षित रहती हैं। अब हम कंपैरिजन करें अपना, हमारी आंख है। अब हमें जरूरत नहीं है तो भी हम इसको यूज करते रहते हैं तो इसकी शक्ति क्षीण हो जाती, कम रोशनी में देखते हैं, बार बार किसी चीज को देखते हैं, तेज रोशनी में देखते हैं, टीवी या मोबाइल की जो स्क्रीन है वो भी इनके लिए हानिकारक है। तो परिणाम क्या निकलता है, ये इतनी अमूल्य चीज समय से पहले हमारा साथ छोड़ने लगती है। तो कछुए से हम इसकी रक्षा करना सीखेंगे। उसके बाद कान, अब कई बार जरूरत नहीं है तो भी हम ऐसी वैसी बातें सुनते हैं, तेज ध्वनि कानों में जाती है तो परिणाम क्या निकलता है, कानों की शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियां समय से पहले साथ छोड़ देती, ढांचा तो है लेकिन कानों से सुनने की शक्ति गई, दांत गए, हमने दांतों से वो चीज खाई जिसने दांतों को नुकसान पहुंचाया, मसलन चीनी, सफेद चीनी हड्डियों को कमजोर करती है, मुंह है जाड़ चली गई, दांत चले गए। तो कछुए से हमने क्या सीखा, कई मंदिर होते हैं जहां इष्ट के सामने कछुआ चांदी का रखा होता है। अजमेर में जो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, पहले आप कछुए के दर्शन करेंगे फिर ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। ब्रह्मा जी के आगे भी कछुआ है, उस पर भी लोग पैसे चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, इसी कारण कि कछुआ जीवन जीने की कला सिखाता है। अपनी इंद्रियों को संभाल के रखो, ये बड़ी अमूल्य, इनकी रिप्लेसमेंट मुश्किल से होती है, होती है तो पहले जैसी नहीं होती है। तो बिना बात इनको यूज कर करके इनको कमजोर नहीं करना है, फिर देखना हमारी भी आयु लंबी होगी, हम भी निरोगी रहेंगे। तो ये है संकीर्ण करने की शक्ति। और उसके बाद लास्ट है समेटने की शक्ति। जैसे अपने को कहीं जाना हो तो बिखरी हुई चीज समेटते हैं ना, भाई रसोई को समेटो, घर को समेटो, ताला लगा के तीर्थ करने जाना है, जो चीज बाहर धूप में सूखनी रखी थी अंदर रख दो, हैं जो चीजें आंगन में पड़ी थी अंदर रखो, ताला लगाना है, समेट देते हैं। और इसलिए चित्र में आप देख रहे हो एक अटैची, एक बिस्तर, सब कुछ चद्दर वद्दर कपड़े गहने पैक कर दिए ताकि उठाना आसान हो जाए और चलना आसान हो जाए। अब जिंदगी में हमें क्या समेटना है, ये तो एक छोटी सी यात्रा थी, आपने माउंट आबू की यात्रा की तो आपने पैक किया बोरिया बिस्तर, किसी की 12 घंटे यात्रा थी, किसी की 16 की थी, दूर से दूर कोई 24 घंटे से आया होगा, तो भारत की भारत में आप आए, आपको एक दिन तैयारी में लगा, अगर आपको लंदन जाना हो तैयारी में कितने दिन लगेंगे, एक दिन की तैयारी से तो काम नहीं चलेगा, महीना, दो महीना, वीजा, पैसे का इंतजाम, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अगर इस दुनिया से पार हमको जाना हो तो तैयारी में कितना टाइम लगेगा, जिंदगी भर तैयारी करनी पड़ेगी, जन्मते ही तैयारी, ये बोरिया बिस्तर पैक करने की, पुण्य का बोरिया, श्रेष्ठ कर्मों का बिस्तर, बहुत बड़ी टिकट है, रोज अर्न करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी अर्न होते होते वो टिकट का पैसा बनेगा और तब आप ऊपर की यात्रा पे जाएंगे तो सुखद यात्रा होगी, क्योंकि आपकी बर्थ एसी वाली होगी, आपके पास एसी की टिकट है और आप बिना ही तैयारी जाएंगे। तो आपने देखा व्हीकल के पीछे लोग लटकते हैं, उनका क्या होता है। तो हमें अपने पुण्यों की पूंजी को एकत्रित करना है, घर चलने की तैयारी करनी है। जाना तो है ही, तो क्यों ना पुण्य साथ में लेके जाएं, खाली क्यों जाएं। दुनिया में लोग कहते हैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, ये तो दुनिया वाली दौलत की बात है, लेकिन सूक्ष्म दौलत हम सब ले जा सकते हैं। मेरे पास मान लो 1,00,000 रुपया है, मैं जब शरीर छोड़ूंगी मैं 1,00,000 रुपया नहीं ले जा सकती, लेकिन उसी 1,00,000 रुपये को परोपकार में लगा दूं तो निश्चित ही आगे मुझे वो 1,00,000 ब्याज सहित मिलेगा। तो ये बोरिया बिस्तर हमें पैक करना है, इसका नाम है समेटने की शक्ति। अभी हम सृष्टि के बिल्कुल अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं और हम सबको उसी तरह से ऊपर जाना है जिसका श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है कि मच्छरों सदृश आत्माएं ऊपर जाएंगी और फिर नए सिरे से एक नई सतयुगी सृष्टि की शुरुआत होगी। ऐसी नई सृष्टि में आने की आप सबको अग्रिम बधाई। ओम शांति।
हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो।
हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो।
शिव से नाता सबका जुटाना हो, शिव से नाता सबका जुटाना यही तुम्हारा नारा हो। सबको एक बनाए जो तेरी वो कहानी है, तेरी वो कहानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है,
एकता लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।